मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हंतादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान बोलिए भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की मैं शुरू करूं इसके पहले एक बात फिर से दोहराऊं कि आज का एक दिन और हमारे अपने जीवन को मिला। रोज दिन तो हमें मिलते हैं पर ऐसे दिन कहाँ मिलते हैं जबकि हम अपने ही जीवन के बारे में सोचने का मन बनाएं, सोचने की तैयारी करें। ये एक दिन और हमारे खाते में जुड़ गया, उस खाते में जो कि सार्थक है। जीवन की सार्थकता के क्षण थोड़े से क्षणों में ये एक दिन और अपन जोड़ रहे हैं जो अपने ही जीवन के विकास के बारे में सोचते हैं। वैसे तो पांचवा दिन है, यात्रा लगभग आधी हो चुकी है, पर ये ऐसी यात्रा होती कि 10 दिन में पूरी हो गई होती है तब तो कह सकते थे कि हाँ शायद आधी यात्रा हो गई, पर ये तो यात्रा जिंदगी भर भी पूरी नहीं होती। किसी किसी की तो एक दिन में पूरी हो जाती है, कोई कोई तो 48 मिनट में भरत चक्रवर्ती जैसे अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। पर आज वो समय नहीं है कि हम अपनी यात्रा इतनी आसानी से पूरी कर सकें। पूरा जीवन हमें शायद यात्रा करनी पड़ेगी और अपनी तरफ यात्रा करनी पड़ेगी। अगर हम थोड़ा सा इस चारों तरफ की प्रकृति को देखें तो बहुत सारा संदेश तो प्रकृति हमें दे देती है। जमीन, जिसे हम जमीन कहते हैं, जिस पर हम चलते हैं, जिस पर हम सैकड़ों तरह के काम करते हैं, कितनी सहनशील है, कितनी हमारी सारी बातों को सहन कर लेती, खोदते हैं, पीटते हैं, उस पर मलमूत्र का विसर्जन कर देते हैं, इसके बावजूद भी वो प्रतिकार नहीं करती है। ये उसकी सहनशीलता, ये उसकी क्षमता हमें क्षमा धर्म सिखाती है। ये जो जल हम रोज जिसका हम उपयोग करते हैं, क्या कभी हमने उससे कोई संदेश लेने की कोशिश की? नाली में डाल दीजिएगा, कीचड़ बन जाता है, सीप में चला जाए मोती बन जाता है, मिक्सअप हो जाता है। क्या हम जल से इस तरह मिक्सअप होना, कोमलता मृदुता सीखना, ऐसा कोई संदेश ले सकते हैं? और ये हवाएं रोज हमसे आके टकराती हैं, कितनी निर्द्वंद्व होकर के विचरण करती हैं, कितनी निश्चल होकर के विचरण करती हैं। क्या हम वायु से निस्संग, निश्चल और सरल होना नहीं सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। और उसके बाद एक और तत्व है अग्नि, जो विकारों को जला देती है। हम अग्नि से अपने विकारों को जलाकर पवित्रता का संदेश ले सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, एक बचा है मात्र आकाश। पंचभूत तत्वों से मिलकर जैसे हमारा शरीर बना है, पर ये सारे पंचभूत तत्व हमें संदेश देते हैं। आकाश से बड़ी सच्चाई नहीं होती है। कितने भी बादल घिराएं, लेकिन आकाश को गंदा नहीं कर पाते हैं। ये उसकी सच्चाई है, आकाश की तरह सच। और उस सच्चाई में सब समा जाते हैं। इसके बाद भी वो सच्चाई सबकी होकर के भी एक ही होती है। आकाश सबका है। आपके आंगन के ऊपर का आकाश आपका अपना कह लीजिएगा, लेकिन आकाश तो एक अखंड है। आपके शहर के ऊपर का आकाश आपका आकाश हो सकता है, पर इसके बावजूद भी आकाश एक अखंड है। सच्चाई एक ही होती है। हम सापेक्ष उसे अपनी अपनी तरह से ग्रहण कर लेते हैं। आज वही सत्य धर्म है। एक खुले आकाश के नीचे हम बैठ करके उस सच्चाई का अनुभव करें, लेकिन कब? जबकि हमारे भीतर सहनशीलता हो, जबकि हम कोमल हो, विनम्र हो, रिसेप्टिव हो, जबकि हम सीधे और सच्चे हो, जबकि हम पवित्र हो, तब उस सच्चाई को हम पा सकते हैं। सच के बारे में तीन बातें जान लेनी बहुत जरूरी है। एक तो सच जो हमें पाना है, एक सच जो पाया जा सकता है, एक सच वो है जो कि कहा जाता है, और एक सच वो है जिसका कि हमें, जो हमें होना है। सच हुए बिना कोई न सच को पा सकता है, न कोई सच को कह सकता है। इसलिए सच को पाना तो है, पर सच होना भी पड़ेगा, और सच होने के लिए सच बोलना भी पड़ेगा। अकेले बोलने से कोई सच नहीं होता और पाता भी नहीं, इसलिए मैं उसको तीसरे नंबर पर रख रहा हूं। जो सच को पाना चाहता है वो निरंतर सच होने की कोशिश करेगा, और वो निरंतर सच बोलने की भी कोशिश करेगा। इसलिए तीन ही चीजें समझने की हैं। एक सच वो है जिसे हमें पाना है। बड़ी से बड़ी सच्चाई क्या है भैया जीवन में, कभी सोचा? बड़ी से बड़ी सच्चाई है निष्कषाय होना। इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं होती। चारों कषायों के अभाव में जो कैवल्य की उपलब्धि होती है, वो बड़ी से बड़ी सच्चाई है। हमारा ध्येय उसी सच्चाई को पाने का है, पर इतना आसान नहीं है। सच को पाना आसान नहीं है, सच होना भी आसान नहीं है, पर सच बोलना आसान है। समझेंगे हम इस चीज को? अभी तक तो मैं सोचता था कि सच बोलना बहुत कठिन है, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि सच बोलना बहुत आसान है। कठिन तो झूठ बोलना है, क्योंकि बहुत सोच सोच के बोलना पड़ता है, बहुत याद रखना पड़ता है। झूठ बोलने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती, शायद सच बोलने के लिए उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं कविता पढ़ रहा था किसी के, कि सच बोलने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती, सिर्फ मन को साधना पड़ता है, और झूठ बोलने के लिए तो पूरे जीवन का अभ्यास करना पड़ता है कि क्या कहा और कब कहा और किससे कहा और किससे नहीं कहा, बहुत ध्यान रखना पड़ता। सच होने के लिए होशियार होना जरूरी नहीं है, बुद्धू होना भी सच होने के लिए शायद पहली जरूरत है। सच पाने के लिए भी शायद यही चीज है। हम इन कषायों से मौन हो जाएं तो हम सच को पा लेंगे। उसी क्षण हम, जिस क्षण कषायों से मौन हो जाते हैं, उसी क्षण हम सच को पा लेते हैं। हमारे भगवान तो सच को पाए बिना बोले ही नहीं। अगर भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली तो केवल्य होने तक 12 बरस तक वे बोले ही नहीं। हर तीर्थंकर केवल ज्ञान होने से पहले, दीक्षा के बाद से चुप होते हैं, तो केवल ज्ञान होने तक बोलते नहीं है। जब तक कि वो सच्चाई हम नहीं पा लें, जब तक कि हम स्वयं सच्चे ना हो जाएं, तब तक सच बोले ही नहीं जा सकता। मैं ये जो बोल रहा हूं वो सच का अंश हो सकता है, लेकिन संपूर्ण सच नहीं है, ये ध्यान रखना। संपूर्ण सच तो सिर्फ इसके माध्यम से पाया जा सकता है, इसलिए जो कहा जा रहा है वो भी सच है, क्योंकि वो सच के बोलने में सहायक है। सिर्फ इतना ही, जब जब मैंने सच कहा तब तब मैं कह कहकर उसे झूठ करता रहा। अज्ञेय को लिखना पड़ा, जितना मैंने सच को कहने की कोशिश की उतना मैं झूठ करता गया, क्योंकि सच कहा नहीं जा सकता। वो जो वास्तविक सच है वो कहा नहीं जा सकता, जो हम कहते हैं वो रिलेटिव ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ कहा नहीं जा सकता। बस हमें ध्यान रखना है कि जो हम कहें वो सापेक्ष हो, तब हम उस सच को पा सकते हैं। एक पिता अपने बेटे से अपेक्षा रखता था कि उसके मरने से पहले उसके ये बेटे सच को पाने, और उसने अपने बेटों से कहा, मुश्किल है ऐसा आज का पिता कहता हो कि बेटे अपने जीवन में सच को पा लेना। बेटे से ये तो कहा जा सकता है कि बेटे जो हमने संपत्ति जोड़ के रखी उसको बढ़ाना, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि बेटे मैं तो पूरी जिंदगी उस सच को पाने के लिए कोशिश करता रहा, मैं नहीं पा पाया, मैं अब संसार से विदा लेता हूं, तुम सच को जरूर पा लेना, इससे पहले कि मैं आंख बंद करूं तुम उस सच को पा लेना। ऐसा उस पिता ने अपने बच्चों से कहा। चार बेटे थे उसके, चारों ने कहा कि आप निश्चिंत रहिएगा, आपके मरने से पहले हम सच को पा करके लौटेंगे, और पिता ने उन्हें विदा कर दिया। चारों समय पर लौट के आए, पर पिता इतना आशक्त हो गया था, इंतजार करते करते इतना थक गया था कि उससे उठा भी नहीं जाता था। लेकिन जब वे चारों लौट करके आए तब पिता उठ करके खड़ा हो गया। कौन है ऐसा जो कोई सच पा करके लौटा हो और अशक्त होने के बाद भी उठ के खड़ा हो जाए उस सच को पाने के लिए। हम तो शायद सच बोलने के लिए जितने अशक्त हो गए हैं उतने झूठ बोलने के लिए सशक्त हैं। और वो पिता जो कि अशक्त हो गया था वो सच सुनने के लिए बहुत सशक्त होकर के खड़ा हो गया। पहले बेटे से कहा कि कहां है सच। उस बेटे ने वेद की ऋचाएं दोहराना शुरू कर दी। पिता को थोड़ी सी निराशा हुई कि वेद की ऋचाओं में सच खोजने निकला था। दूसरे की तरफ देखा, उसने उपनिषद के सूत्रों को दोहराना शुरू कर दिया। उसने कहा मैंने पाया है सच, और जैसे उपनिषद के सूत्र दोहराना शुरू किए पिता ने बहुत निराश होकर तीसरे बेटे की तरफ देखा। थोड़ी सी आशा शेष थी कि शायद तीसरा बेटा, चौथे वाले से तो ज्यादा आशा नहीं थी क्योंकि बहुत छोटा था। तीसरे वाले ने सारे धर्मों का सारभूत जो तत्व था वो कहना शुरू कर दिया। पिता बहुत निराश होकर के बैठ गया अपने पलंग पर, जिस पर से उठकर स्वागत में खड़ा हुआ था। चौथे वाले ने सोचा कि शायद पिता बहुत थक गए हैं इसलिए अपनी बात कहना नहीं चाहिए, पूछेंगे तो कह दूंगा, और वो चुप खड़ा रह गया। पिता थोड़ी देर बैठा रहा, पर अचानक उसे ध्यान आया कि अभी तो चौथा बेटा भी है, थोड़ी सी आशा है, इससे और पूछ लूं कि क्या तुमने सच को पाया है। तीन बेटों से तो उसे सिर्फ निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात, वेद के ऋचाएं दोहराई दी गई हैं, उपनिषद के सूत्र दोहराए गए हैं, सारे धर्मों का सारभूत तत्व भी कहा जा चुका है, इसके बाद भी पिता निराश है कि सच सच तो फिर भी कहीं पीछे छूट गया है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन चीजों में सच मत खोजिएगा, इन चीजों में सच नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर सवाल इन चीजों के प्राप्त कर लेने के बाद सच को पाने का है। सब साधन मिल जाने के बाद भी साध्य की सिद्धि हो ना हो कि हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये सब साधन है, इनको साध मत मान बैठना। चौथे वाले बेटे से उठ करके कहा कि तुमने क्या पाया। चौथे वाले बेटे ने तो एक बार पिता को बस ऐसे देखा कि बस पिता भी देखता ही रह गया, बस देख करके पिता की तरफ और आंख नीची कर ली पिता के चरणों में झुकता चला गया और माथे से उसने पैर छू करके लगाया, तब पिता ने उसको गले लगा लिया और कहा कि अब मैं शांति से मर सकूंगा, इस छोटे बेटे ने सच पा लिया। कितना आसान है सच को पाना, कि जब हम चुप हो गए हैं तब मानिएगा कि हमने सच को पा लिया। चुप हो जाने का नाम सच है क्या? हां, शायद सब कुछ पा लेने के बाद जब चुप हुआ जाता है, सच्चाई को प्रकट करने की मुश्किल पड़ती है कि सच्चाई क्या है, तब मालूम पड़ता है कि हां सच को पा लिया। उस बेटे की आंख बताती थी कि इसने सच को पा लिया है, उस बेटे का व्यवहार बताने लगा था कि इसने सच को पा लिया है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। ये तो बहुत कठिन बात मैंने आपसे कह दी, नहीं, इसके बाद प्रैक्टिकेबल भी है। ये तो मैंने आपको वो चीज दिखा दी जो वास्तविक है। ये चारों कषायों के अभाव में अपने आप प्रकट होने वाली चीज है, घबराने की बात नहीं है। हम खुद उसको पाकर के चुप हो जाएंगे, किसी से कुछ कह नहीं पाएंगे। चुप्पी दो ही तरह की होती है, एक अज्ञानी की होती है और एक ज्ञानी की होती है। मैं ज्ञानी की चुप्पी की बात कर रहा हूं। अज्ञानी भी चुप रहता है क्योंकि वो जानता ही नहीं, कुछ कहने ही नहीं जानता, लेकिन जो कहना जानता है इसके बाद भी चुप है, उसकी चुप्पी में सार्थकता है, उसकी चुप्पी में सच्चाई है। हम क्या ऐसी चुप्पी साध सकेंगे? आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि मौन के मायने क्या है, सूत्र वचन बोलना, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना, यही मौन है। पर पशुओं की तरह मौन रह जाने का नाम मौन नहीं है। इसके मायने क्या है? इसके मायने सिर्फ इतना ही है कि सच्चाई को पाकर के कहा नहीं जा सकता, अनडिस्क्राइबल है। क्योंकि वो कहीं नहीं जा सकती इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूं, पर मैंने पा तो लिया है। ऐसा प्रयास, हमारा लक्ष्य तो यही है, पर क्या करें इसको पाने के लिए? सच होना पड़ेगा। सच होने के लिए क्या करें? बहुत आसान है। सच होने के लिए सबसे पहले कभी भी सच्चाई पर संदेह नहीं करना, सच्चाई पर विश्वास करना सीखना। सच होने के लिए सच्चाई पर विश्वास तो करना पड़ेगा। कभी आपने क्या पता अज्ञेय को पढ़ा कि नहीं, विश्वास, और वो भी सच्चाई पर विश्वास बहुत मुश्किल होता है। झूठ पर विश्वास बहुत जल्दी जम जाता है, सच्चाई पर विश्वास तो बहुत देर से जम पाता है। अज्ञेय ने लिखा उनके अपने जीवन की घटना में कि बहुत घुमक्कड़ थे, कश्मीर की यात्रा पर निकले थे अपने साथियों के साथ और रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो उनका मित्र था। उसने उन्हें 3,000 रुपए दिए, सन 36 की बात है। 3,000 रुपए 3 करोड़ के बराबर हुआ करते होंगे उन दिनों में, सन 36 में। तो 3,000 रुपए दिए और कहा कि आगे जो आप जा ही रहे हैं वहां पर नाम बता दिया कि इनको दे देना। अज्ञेय ने पॉकेट में रखे, आगे चले गए। साइन करने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने 3,000 आपसे लिए हैं। कितना विश्वास है, सच्चाई का विश्वास है। और इससे पहले कि वो बस में बैठे, एक 11-12 बरस का बेटा दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि दादा 3,000 रुपए वापस दे दीजिएगा, हमारे मालिक कहते हैं कि वहां नहीं देना है। अब अज्ञे ने 3,000 रुपए निकाले और उस 11 बरस के बेटे से ये तक नहीं पूछा कि तेरे मालिक कौन है, किसने मंगाए हैं, वापस दे दिए। जो इतना जानता है कि 3,000 रुपए इनके पास हैं, वो सच ही होगा। बहुत मुश्किल है ऐसा, इतना विश्वास कर पाना। बाकी लोगों ने कहा कि चले गए 3,000 रुपए, उससे पूछा तक नहीं कि कौन से मालिक ने मंगवाए हैं। अज्ञेय ने कहा कि 3,000 रुपए अगर चले जाएंगे तो चले भी जाएंगे, मैं एक एक पाई जोड़ के 3,000 चुका दूंगा, लेकिन एक बार अगर सच पर अविश्वास करना सीख लूंगा तो जिंदगी भर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। 3,000 रुपए तो फिर से मैं इकट्ठे करके पाई पाई चुका दूंगा अगर चले भी जाएंगे, पर एक बार इस छोटी सी जान पर, छोटे से बच्चे पर अगर मैं अविश्वास करना सीख लूंगा तो जिंदगी भर किसी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि सच होने के लिए सच पर विश्वास करना भी सीखना पड़ेगा, सच पर संदेह करना छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, सच्चाई के अलावा और किसी प्रलोभन के मिलने पर भी हम सच्चाई को छोड़ेंगे नहीं। सच्चाई के एवज में हम कोई प्रलोभन नहीं जाएंगे। दूसरा कदम है। और तीसरी बात, जो सच होगा, अगर वो सच है और हम अपने अंतरंग में जान रहे हैं कि सच है, तो हम उससे घृणा नहीं करेंगे। तीसरी बात, सच्चाई से कभी घृणा नहीं करना। अगर सच होना है तो सच पर विश्वास करना पड़ेगा। सच के अलावा कोई और दूसरी चीज का प्रलोभन हमें डिगा नहीं सकेगा, और सच से हम घृणा नहीं करेंगे। और चौथी चीज, सच के अलावा और जो भी बुरे मार्ग हैं, उन पर कितना भी अच्छा वो क्यों ना कहे कोई, पर हम उन पर चलने के लिए राजी नहीं होंगे। और अगर कोई सच्चा है और कहीं कोई छोटी सी भूल कर बैठता है, तो उस भूल को हम फैलाएंगे नहीं, उस दोष को देखेंगे नहीं। सच्चे व्यक्ति के दोषों को नहीं देखना। सच्चा व्यक्ति निर्दोष ही होता है। अपनी आंख पर पहले अविश्वास करना, सच्चे व्यक्ति के दोष मत देखना। सच्चाई के दोष देखने पर धीरे धीरे सच्चाई समाप्त हो जाती है। और छठवीं बात, जो कि सच होने के लिए जरूरी है, कि अगर कोई सच्चाई से विचलित हो रहा हो तो उसे संभाल लेना। अगर स्वयं भी हम सच्चाई से विचलित हो रहे हों तो अपने आप को संभाल लेना। कई बार ऐसा होता है, संस्कार वश सच बोलते बोलते हम झूठ हो जाते हैं। झूठ बोल देना फिर भी ठीक है, लेकिन झूठे हो जाना ठीक नहीं है। अगर हम भीतर से झूठे नहीं हुए हैं तो हमारा बोला हुआ झूठ भी सच की कोटी में आएगा, ये ध्यान रखना। और अगर हम भीतर बहुत झूठे हैं और बाहर से सच भी बोल रहे हैं, तो वो सच हमारे आचार्य भगवंतों ने सच की कोटी में नहीं डाला है। भीतर से अभिप्राय में अगर झूठापन नहीं है और वचन भले ही झूठे हों, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पहली जरूरत है कि कभी अगर सच्चाई भीतर से सच्चाई डोल जाए तो उसको संभाल लेना, और सामने वाला भी भीतर से सच्चाई से डोल रहा है तो उसको भी संभाल लेना। सच होने के लिए बहुत जरूरी। और सातवां स्टेप है कि सच्चाई को हमेशा प्यार करना, सच्चाई का सम्मान करना। बहुत मुश्किल हो गया है आज के समय में सच्चाई का सम्मान कर पाना। मन ही मन तो कर लेते हैं, चार लोगों के सामने करने में बहुत मुश्किल मालूम पड़ती है। मन ही मन तो करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा, चोर भी जानता है कि वो चोरी कर रहा है, और जो साहूकार है उसके प्रति उसका आदर मन ही मन तो होता है कि मैं बहुत निकृष्ट हूं। झूठ बोलने वाला भी ये जानता है कि जो सच बोल रहा है वही सच्चा है, मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सच का सम्मान बहुत जरूरी है। हम इन दिनों सच का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी घटना सुनाऊं, वो शायद यहां पर बैठे हो विदिशा के व्यक्ति के जीवन की घटना है। वो अपने छोटे से 6 बरस के बेटे को लेकर मेरे पास आए थे, और उन्होंने मेरे से कहा कि आज मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला। ये मेरा वो बेटा है जो मेरे से आज तक कभी झूठ नहीं बोला। पता नहीं बाहर बोलता है कि नहीं बोलता, पर मेरे से कभी झूठ नहीं बोला, और जिस बात का गर्व था आज भी मेरे बेटे ने मेरे से झूठ बोला। मैंने कहा इसको मेरे पास छोड़ दीजिएगा, मैं इससे बात कर लूंगा। इतनी छोटी सी जान झूठ कैसे बोल सकती है? अभी तो उसने सच ही नहीं जाना, वो झूठ कैसे बोलेगा? ध्यान रखना, जो जितना ज्यादा सच को जानता है वो उतने ज्यादा झूठ बोलता है। बहुत खतरनाक है। झूठ बोलने वाला सच को सबसे ज्यादा जानता है। शायद सच बोलने वाला भी उतना नहीं जानता होगा कि सच क्या है, वो तो सिर्फ बोल देता है। मैंने कहा अभी तो इतना ये सच को जानता भी नहीं है, अभी तो झूठ बोलने के इसके दिन ही नहीं है, बहुत छोटा है। आखिर आई ये बात कहां से? उनको जाने दिया, मैंने उससे बात करी। बेटे, तुमने अपने पिता से झूठ बोला। मुझे विश्वास था कि अब मेरे से तो झूठ नहीं बोल पाएगा, और उसने नहीं बोला झूठ। उसने कहा मैंने अपने पिता से झूठ कहा। क्या झूठ कहा? ये झूठ कहा कि मैं उदास था। पिता ने पूछा कि उदास क्यों हो, तो मैंने कहा कुछ नहीं। पिता ने कहा कि क्या तुम्हें आज किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। क्या तुम्हें गुरुजी ने डांटा तो नहीं? नहीं, मुझे नहीं डांटा। मैंने ये सब बोल दिया और ये सब झूठ था। मैंने कहा तुमने झूठ बोला क्या? बोले मैं आपको बताऊं महाराज जी, बात क्या हुई कि मैं होमवर्क करके नहीं ले गया था और गुरु जी पूछ रहे थे कि जो होमवर्क करके नहीं लाए हैं वे अपने हाथ ऊंचे करें, तो मैंने हाथ ऊंचा कर दिया कि मैंने होमवर्क नहीं करा। नहीं करा था तो सच्ची बोलना चाहिए ना महाराज जी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बोले लेकिन गुरु जी ने आकर के और हमको दो तमाचे मारे। हमने सच भी बोला फिर भी हमको तमाचे मारे, और इतने ही महाराज जी, मेरे बाजू वाला वो भी होमवर्क करके नहीं लाया था लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया था तो गुरुजी ने उसकी कॉपी भी नहीं देखी और मान लिया कि इसने नहीं किया। तो मुझे लगा कि काश मैंने भी ऐसा ही झूठ बोल दिया होता तो शायद आज मुझे दो चाटे नहीं खाना पड़ते। बस फिर मुझे लगा कि आज मैं घर जाकर के पिताजी से सच बोलूंगा कि गुरुजी ने दो चाटे मारे हैं तो वे भी मुझे डांटेंगे कि तुमने सबक क्यों नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि यहां बचने के लिए तो अच्छा उपाय है कि मैं झूठ बोल दूं कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि कभी ऐसी सच्चाई अगर आपके बच्चे बोले तो उनका सम्मान करना, उन्हें दंडित मत करना। आज का समय हम सत्य को जितना अधिक पनिश कर रहे हैं उतना झूठ को नहीं कर रहे हैं। हम सच को पनिशमेंट नहीं दें, सच का अगर हम सम्मान भी नहीं करें तो कम से कम सच को हम दंडित तो ना करें। मुझे अपने जीवन की ऐसी कई घटनाएं याद हैं, छोटे छोटे बच्चों की पाठशाला में, मैं छोटे बच्चों के बीच 3 साल तक रहा हूं। और एक बार ऐसा हुआ था कि लाइट चली गई थी, पढ़ाते पढ़ाते छोटे छोटे बच्चों को पहला भाग पढ़ाते लाइट चली गई। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे शोरगुल करेंगे, बट नेचुरल उनने सीटी वीटी बजाई और हल्ला भी करा क्योंकि लाइट चली गई थी। मैंने जब लाइट आई तो जितनी भी बिटिया लोग थी उन सबको तो कहा कि तुम जाओ हाथ डाल के मुंह में, ये विसिल तो नहीं बजा सकती, ये तो तय है, तुम लोग जाओ। जो बच्चे बचे उन बच्चों से कहा कि सच सच बताओ किसने विसिल बजाई है। बच्चों में से किसी ने हाथ नहीं उठाया, झूठ बोलने का संस्कार तो बहुत था। मैंने कहा अच्छा सब खड़े हो जाओ, तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि सच नहीं मालूम पड़ेगा। और मैं एक एक के पास आ रहा हूं, मेरी तरफ देखना मेरी आंखों में और कहना कि मैंने नहीं बजाई। बहुत कठिन परीक्षा थी, जिसकी आंख की शर्म हो वो झूठ नहीं बोल सकता और जिसकी आंख की शर्म ही चली गई हो वो तो झूठ आसानी से बोल सकता है। मैं पहले बेटे के पास पहुंचा तो इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंचूं और उसकी तरफ देखूं या वो मेरी तरफ देखे वो फबक के रो पड़ा, भाई साहब मैंने नहीं बोला। मैंने कहा तू निर्दोष, निकल जा बाहर। दूसरे वाले के पास पहुंचा, उसकी भी आंख में आंसू आ गए, मैंने नहीं बोला। इसके पहले कि तीसरे के पास पहुंचूं उन 25 लड़कों में से 5 हाथ ऊपर उठ गए कि मेरे पास आएंगे तब तो मैं कांप ही जाऊंगा, प्राण निकल जाएंगे। ये जो सच है ये भी जब कांप गए हैं तो मैं तो झूठा हूं, और ये मेरे निकट आकर के मेरी तरफ देखने के लिए कहेंगे तो देख भी ना पाऊंगा। इससे पहले ही हाथ उठा दिए कि सच सच बोलता हूं, हमने बिसिल बजाई थी, हमने हल्ला करा था। उन 5 को मैंने बाहर निकाला। मुझे, मैं आपसे घटना बता रहा हूं, सिर्फ आप कोई संदेश ले लीजिएगा, मैं उसमें से, मुझे उसमें से मिल कर दीजिएगा। वो चूंकि मेरे साथ घटी इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, किसी और के साथ भी घटी होती तो उसको भी बहुत शान से सुनाता। सच्चाई को तो जहां सम्मान होता है वहां तो सच्चाई को तो ठाट से ही सुनाना चाहिए। उन 5 को बाहर निकाल करके और बाकी सबको भेज दिया, उन्हें पनिशमेंट तो देना है पर सच का पनिशमेंट नहीं देना है। उनको ऐसा फील ना हो कि हमने सच बोला इसलिए पनिशमेंट मिल गया। बड़े वर्णी जी की, गणेश प्रसाद जी के ऊपर फोटो लगी थी। मैंने कहा 5 हाथ जोड़ो, मेरे सामने नहीं वहां, कि बाबा जी हमने जो कुछ भी करा मंदिर में ठीक नहीं करा, हमने शोरगुल करा। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आप तो रोज करते हैं शाम को, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं, नहीं आपसे कैसे कह सकता हूं। आपके यहां तो अभी मुझे रहना है, दीपावली तक रहना है, अभी कैसे कह सकता हूं। उन बच्चों से मैंने कहा कि बच्चों तुमने गलत तो किया ना। हाँ हमने मंदिर में, हमको शोर नहीं करना चाहिए था, मांगो क्षमा, बाबा जी से मांगो। उन पांचों ने क्षमा मांगी और मैंने कहा कि बस जाओ, मैं तुमसे बहुत खुश हूं कि तुमने सच बोला है। बीबी बहुत खुश है कि उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिला। बाहर जाकर के जो लोग खड़े थे कि आज तो इन लोगों को पनिशमेंट मिलेगा, उनसे उन्होंने बहुत आसानी से कहा कि चूंकि हमने सच बोला था इसलिए हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिला, पर हमने अब बाबा जी के सामने सौगंध ले ली है कि हम मंदिर में ऐसा नहीं करेंगे। और अगले बार जब लाइट गई, कितने ही दफे लाइट गई, लोगों ने बाहर से आकर के कहा कि भैया आपकी क्लास यथावत चल रही है, बच्चे जरा भी शोर नहीं कर रहे। मैंने कहा आप देख लीजिएगा, एक बार सच्चाई का सम्मान करके देखिए, एक बार सच्चाई को प्यार करके देखिएगा, और जब भी मन बने तो सच्चाई के गुण गाइएगा, सच्चाई के गीत गाइएगा। ये आठ बातें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, यही सम्यक दर्शन के आठ अंग हैं। मैंने उनको इस तरह से कह दिया है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारे आचार्य भगवान विश्वास करना सीख सकते हैं। सच्चाई के एवज में किसी और चीज को हम पसंद नहीं करेंगे, सच्चाई से कभी घृणा नहीं करेंगे, सच्चे मार्ग के अलावा किसी और मार्ग को हम स्वीकार नहीं करेंगे, सच्चे व्यक्ति के दोष नहीं देखेंगे, और सच्चाई से कोई विचलित हो रहा होगा तो उसे संभाल लेंगे, सच्चाई का सम्मान करेंगे और सच्चाई के गीत गाएंगे, तो हम एक न एक दिन जरूर सच हो जाएंगे। बात सिर्फ शेष रह गई सत्य बोलने की, तो सत्य बोलने के लिए तरीका है कि पहले सोच लेना कि सच क्या है। सच क्या है पहले ये तय कर लेना, अगर ये तय नहीं कर पाओ तो ठहरो। अगर ये तय हो जाए कि सच मैं जानता हूं तो ही बोलने की चेष्टा करना। और दूसरी बात कि आपका मोटिव क्या है, आप बोलना क्यों चाह रहे हैं, सच क्यों बोलना चाह रहे हैं आप, आपका इंटेंशन क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, आपको इतनी जरूरत क्या पड़ी है सच को बोलने की। अगर आपका मोटिव हितकर हो तो ही आप बोलना। सच क्या है पहले ये पूरी तरह तहकीकात कर लेना कि सच क्या है, फिर बोलना, और अपने मन को टटोल लेना कि सच बोलने का अभिप्राय क्या है, और तीसरी बात इसका परिणाम क्या निकलेगा। इन तीन बातों का विचार कर लें और फिर उसके बाद बोलें। मुझे तो लगता है कि मैं जब जब इन तीन बातों का विचार करता हूं तो चुप हो जाता हूं, बोल ही नहीं पाता हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि सच क्या है। ये मेरी दो आंखें पूरा नहीं देख पाती, ये मेरे दो कान पूरा नहीं सुन पाते। अपनी आंखों देखी और कानों सुनी पर भी विश्वास मत करना, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि सच क्या है। बस अगर हम नहीं भी जानते हैं कि सच क्या है पर हमारा अभिप्राय सच है और उसका परिणाम भी अच्छा निकलने वाला है तो आसानी से बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य हो, शिव हो, शिव का मतलब है कल्याणकारी और शिव का मतलब है प्रिय। प्रिय वही है जो कल्याणकारी है और सुंदर वही है जो हितकारी है, इसलिए कहा गया कि सत्यम शिवम सुंदरम। कोई बहुत सुंदर हो, इसके बहुत सुंदरता के अर्थ बाहरी नहीं ले लेना कि बहुत बोलने में मीठा है, बहुत सुंदर लग रहा, ये प्रिय का अर्थ नहीं है। प्रिय का अर्थ वो है जो कल्याणकारी हो, दूसरे का कल्याण करता हो, दूसरे को पीड़ा ना पहुंचाता हो, वो प्रिय है। और शिव, वो शिव रूप वही है और सुंदर क्या है, जिससे कि अपना हित होता हो और दूसरे का भी हित होता हो, ऐसा बोलना। और एक आखिरी बात, सत्यम वद प्रियम वद हितम वद, सत्य भी बोलना, प्रिय भी बोलना और हितकारी भी बोलना। एक बहुत छोटी सी घटना आपको सुना दूं। एक राजा के पास एक ऐसा केस आया कि जिसमें दंड देना बहुत जरूरी था, और मृत्यु दंड देना जरूरी था, और मृत्यु दंड राजा ने दे भी दिया। और जैसे ही उस बंदी को मृत्यु दंड सुनाया, उस बंदी ने गालियां देना शुरू कर दी राजा को। राजा समझ नहीं पाया कि यह बंदी क्या कह रहा है। मंत्री ने खड़े होकर धीरे से कहा, जो बड़ा मंत्री था, उस बड़े मंत्री ने खड़े होकर के कहा, राजा ने पूछा कि क्या कहता है ये बंदी, इसको दंड दिया गया, उसकी प्रतिक्रिया क्या है। तो मंत्री ने खड़े होकर कहा कि कहता है कि गलती तो हो गई है, अगर क्षमा कर सको तो क्षमा करो, आगे नहीं करूंगा। गाली दे रहा है वो, बंदी गाली दे रहा है, और मंत्री धीरे से राजा से क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि क्षमा कर दें, गलती तो हो गई है, आगे से नहीं करूंगा, आप तो बहुत महान हैं, आप क्षमा कर दीजिएगा। इतने में जो दूसरा छोटा मंत्री बैठा था उसने कहा ठहरो, उसको मौका मिल गया कि आज तो फंस गया ये बड़ा मंत्री, फंस गया आज। और उसने राजा से कहा कि वो तो झूठ बोल ही रहा है, वो तो गाली दे ही रहा है, ये मंत्री भी झूठ बोल रहा है। अब राजा को इतनी देर में बहुत कुछ समझ में आ गया। राजा ने उस छोटे मंत्री से कहा कि भले ही तुम सच बोल रहे हो पर तुम्हारा ये सच मुझे पसंद नहीं है, बैठ जाओ, इस मंत्री का झूठ अभी मुझे पसंद है, इस बंदी को रिहा कर दिया जाए। मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, सत्यम वद, हितम वद, प्रियम वद। और एक और घटना आपको सुनाऊं जो मुझे समता सागर जी ने सुनाई थी, उनकी प्रिय घटना है ना, सबको मालूम। एक बहुत बड़ा चितेरा था, उसने उस चित्र बनाया राजा का, राजा लेकिन काना था, एक आंख नहीं थी। एक चित्रकार ने राजा को कैसा बनाया, काना बनाया, लेकिन ये प्रिय नहीं था, था तो सत्य, था तो सत्य की राजा काना है, लेकिन ये प्रिय नहीं था। दूसरे ने कैसा बनाया, दोनों आंख वाला, तो था तो प्रिय पर सत्य नहीं था। देखो मुश्किल, पहले वाले ने काना बना दिया, सत्य था पर प्रिय नहीं था, दूसरे वाले ने काना नहीं बनाया, दोनों आंख वाला बनाया, राजा तक ने पसंद नहीं किया कि है तो प्री लेकिन सच नहीं है। और तीसरे वाले ने मालूम कैसा बनाया, उसने राजा को धनुष बाण लिए हुए बनाया और एक आंख उनकी बंद है, मान लो ऐसा लग रहा है कि एक आंख नीचे हुए हैं और एक से धनुष बाण चला रहे हैं, वो सत्य भी है प्री भी है और राजा के गुण गा रहा है कि राजा बलवान भी है। सच को कह पाना बहुत कठिन है और सच को कह पाना बहुत आसान है। अगर सच दूसरे का हित रख के कहा जाए तो सच को कहना बहुत आसान है, और अगर दूसरे के हित का ध्यान नहीं है तो वो सच बोलना आसान नहीं है, वो सच क्योंकि सच नहीं है। मेरी बात आज सत्य धर्म के दिन आप समझ गए होंगे कि अगर हमें सच को पाना है तो हमें सच होना भी पड़ेगा, और यदि हमें सच होना है तो हमें सच को बोलना भी पड़ेगा। सच हुए बिना बहुत लोग सच बोल देते हैं लेकिन वो सच पीड़ादायक होता है, और अकेले सच बोलने से नहीं होता, सच होकर के बोलना चाहिए और सत्य को पाने के लिए सच बोलना चाहिए। अगर इस चीज का हम ध्यान रखेंगे तो ये हमारा जीवन आज सत्य धर्म के दिन सचमुच सच की तरफ आगे बढ़ेगा। मैं भावना भाता हूं कि हम सब सच को पाने के लिए थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा सा सच्चा होना सीखें और रोज सच होकर के सच बोलना भी सीखें। इसी भावना के साथ बुद्धि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी Yeah.
अलग खुदा अदा करती हूँ।
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, उत्तम सत्य धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की, धर्म हमारी संपूर्ण सिद्धि का एक सम्यक मार्ग है। यदि हम इष्ट को पाना चाहते हैं तो वह इष्ट क्या है? वह इष्ट है जिसकी आकांक्षा हमारे भीतर में है, उसका नाम सुख है। सुख की पाने की भावनाएं हम सबके भीतर में हमेशा से रही हैं और रहती हैं, लेकिन सुख कैसा होता है? सुख आकुलता से परे, निराकुलता का नाम ही यहां सुख है। निराकुलता कब आती होगी? जब हमारे भीतर से इच्छाएं पलायन कर जाएं, जब इच्छाएं हट जाती हैं तो निराकुलता आने लगती है। और यदि आप इच्छा से रहित निरीक्षा भाव को देखना चाहते हो तो आप अपनी परिपूर्णता में देख सकते हो, और परिपूर्णता उसका नाम ही यहां सत्य है, उसका नाम ही यहां अमृत है, उसका नाम ही यहां सुधा है, उसका नाम ही यहां धर्म है। ऐसे सत्य को पाने के लिए सत्य स्वरूप अपनी चैतन्य आत्मा की ओर हमें दृष्टि रखनी चाहिए। जिस सत्य की बात यहां की जा रही है वह सत्य बाहर में नहीं, वह सत्य वचनों में नहीं, वह सत्य मन से नहीं, वह सत्य शरीर से नहीं, बल्कि इनके अंतस में होने वाला, हमारे भीतर में होने वाली जो अंतरंग की निर्मल परिणति है उसका नाम ही यहां सत्य धर्म है। सत्य अर्थात अपने ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा की अनुभूति करना, अपने चैतन्य का अनुभवन करने का नाम ही यहां पर सत्य है। वह कब होगा? असत्य का विमोचन किए बिना सत्य का अनुभव संभव नहीं है। असत्य क्या है? राग द्वेष कसाएं हिंसा झूठ चोरी कुशील का दुराचरण मिथ्या धारणाएं मिथ्या अभिमान ये सब असत्य है। इस असत्य का विमोचन हुए बिना सत्य स्वरूप अपनी आत्मा का दर्शन स्पर्शन अनुभवन संभव नहीं है। क्योंकि हमारे सत्य के ऊपर एक ऐसा आवरण आ गया है। सत्य का सूर उस आवरण के कारण, उस विकारी परिणामों के कारण, उस व्यवहार परिणति की वजह से ढक चुका है, धूमिल हो रहा है। उस सत्य के सूर पर अज्ञान की धूल उड़ रही है, उस सत्य के सूर पर कसायन की धूल चल रही है और उसकी छवि धूमिल होती चली जा रही है। हम उस सत्य का दर्शन करना चाहते हैं, असत्य को हटाने की कोशिश करो। बरसात के दिनों में जब सूर्य का प्रकाश रुक जाता है, क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसके ऊपर काले काले बादल आ जाते हैं, सूर्य ढक जाता है, वह अपना पूरा प्रकाश नहीं दे पाता। आज ऐसी ही स्थिति हमारे साथ है कि जो हमारे सत्य स्वरूपी आत्मा का प्रकाश हमारे पूरे अंतस को प्रकाशित करने वाला होना चाहिए था, वह प्रकाश हमारे बाहर तक फूट करके आ जाए और आसपास में रहने वाले लोगों के लिए भी एक नई दिशा दे, लेकिन नहीं दे पा रहा। हम स्वयं अंधेरे में हैं, हम स्वयं अज्ञात हैं, हम स्वयं पथभ्रष्ट हैं, मिथ्या दृष्टि हैं। फिर क्या हाल होगा यदि कुमार्ग पर चलो गए? इससे तो है कि अभी हमारा सत्य का प्रकाश बाहर नहीं आया, इसलिए हमें सम्यक मार्ग और मिथ्या मार्ग का ठीक ठीक निर्णय नहीं किया और न कर सके। आज तो असत्य के विमोचन का दिन है, जो मैं नहीं हूं बस उसका विमोचन कर देने का नाम सत्य धर्म है। मैं क्या नहीं, मैं क्रोध हूं नहीं, मैं अहंकार हूं नहीं हूं, मैं छल कपट हूं नहीं हूं, मैं क्या लोभ हूं नहीं हूं। कोई भी आप बेकारी भाव को लेकर के देखिए, उसका ही उससे पूछिए क्या मैं हूं ये, तो जवाब आएगा कि मैं नहीं हूं। ऐसा जवाब क्यों आता है कि ये मैं नहीं हूं? ऐसा क्यों नहीं आता कि मैं क्रोध हूं, मैं अहंकार हूं? ऐसा क्यों नहीं आता? आप जानते हैं इसको कि क्रोध शाश्वत त्रैकालिक परिणति नहीं है, क्षणिक है, थोड़ी देर की है, एक कासायिक परिणति हमेशा नहीं रहती है। इसलिए असत्य है ये मैं नहीं हूं, और इसका विसर्जन करने के बाद ही उस सत्य तक पहुंचा जा सकता है। असत्य का विमोचन किए बिना सत्य का दर्शन संभव नहीं है, अंधकार के हटे बिना प्रकाश संभव नहीं है। अंधकार में रहने पर प्रकाश के दर्शन नहीं हो सकते, अंधकार को हटाए बिना प्रकाश के दर्शन नहीं हो सकते। अंधकार को हटाना है, प्रकाश पैदा करिए, प्रकाश की तरफ लक्ष्य रखिए, अंधकार लिंगम से हटेगा। सत्य की तरफ दृष्टि रखेंगे, असत्य अपने आप हमारी दृष्टि में आ जाएगा कि असत्य है, उसे छोड़ने का प्रयास भी हमारा होने लगेगा। लेकिन यह सत्य जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यह वचनातीत है। इस सत्य के लिए शब्दों में कहा नहीं जा सकता, इसे शब्दों की परिभाषाओं में बांधा नहीं जा सकता, इसे इंद्रियों के द्वारा इसका स्वाद नहीं लिया जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता। यह शब्दातीत, इंद्रियातीत है। इस सत्य के लिए हमारी आंखें देख नहीं सकती, इस चर्म चक्षु सत्य का दर्शन नहीं कर सकते। उस सत्य को देखने के लिए तो कोई दूसरे ही नेत्र, कोई दूसरी ही आंख हमारे भीतर होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम उसका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिसके लिए वो आंख प्राप्त ना हो, एकमात्र इंद्रियों से उसको देखना चाहता, एकमात्र चर्म चक्षुओं से देखना चाहता हो, संभव नहीं है। किसी कवि ने चार पंक्तियां कही, सकती नहीं, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, दिखाई सत्य क्या देवे जो ना हो ज्ञान की आंखें। इन ज्ञान की आंखों में वो चारित्र का सुरमा, तब देखती हैं सत्य को वो पारखी आंखें। हम जिन आंखों से देखना चाहते हैं ये आंखें तो रोग से पीड़ित हैं, रोग से प्रभावित हैं। जब आई फ्लू हो जाता है तब आपके लिए ठीक ठीक नहीं दिखता, आपकी आंख में पीड़ा हो जाती है क्योंकि आंख आ गई है, तकलीफ देती है। हम जिसको जैसा देखना चाहते हैं वैसा नहीं देख पाते हैं। हमारी आंखों में भी, ज्ञान की आंख में भी ऐसी ही कोई आई फ्लू का रोग हो गया है, और वह रोग है मिथ्या धारणाओं का, वह रोग है मिथ्या अभिनिवेश का, वह रोग है मिथ्या अभिप्राय का। जब तक हमारी आंखों में ये रोग बना रहेगा तब तक हम उस सत्य का दर्शन नहीं कर सकते। उस शत्रु भी रत्न को देखने के लिए तो ज्ञान के नेत्र चाहेंगे, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। और ज्ञान के नेत्र में भी चारित्र का सुरमा यदि होगा तो आपकी आंखें ठीक ठीक उसे देख सकती हैं, परख सकती हैं, अन्यथा सत्य इन ज्ञान से भी नहीं देखा जा सकता। जो ज्ञान हमने प्राप्त कर रखा है वो ज्ञान भी अधूरा है उस सत्य को पाने के लिए। कारण अधूरा क्यों है? क्योंकि वह ज्ञान क्रोध से, मान से, माया से और लोभ से प्रभावित है, इस विष से विषैला हो चुका है, मिथ्यात्व के विष से दूषित हो गया है, इसलिए वह ज्ञान भी उसका दर्शन नहीं करा सकता। आज सत्य धर्म जो कहा जा रहा है, इस सत्य धर्म के लिए इतने बाद में कहने की आवश्यकता क्या थी? पहले ही कह देते सत्य की बात, क्योंकि धर्म की बात सत्य से ही शुरू होती है, असत्य से शुरू नहीं होती, सत्य से ही प्रारंभ कर देना थी। लेकिन आचार्यों ने चार तरह के तत्वों का निरूपण कर देने के बाद पांचवी स्थान पर उसका निरूपण किया जा रहा है, इसके पीछे रहस्य क्या है? जिसके भीतर में समता, जिसके भीतर में मृदुता, जिसके भीतर में सुचिता है, जिसके भीतर में रुचिता है, वही न व्यक्ति सत्य को उपलब्ध कर पाएगा। जो क्रोधी है, जो मानी है, जो वक्त सुभावी है, जो लोभ से आक्रांत है, वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता। वो व्यक्ति सत्य बोल भी नहीं सकता। यदि बच्चों के सत्य की बात कही जाए तो क्रोधी व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, अहंकारी व्यक्ति तो बोल भी नहीं सकता, उसे तो पग पग पर असत्य का सहारा लेना पड़ता है, उसे अपने अहंकार की वजह से। और वक्त प्रणामी तो हमेशा टेढ़ा मेला चलता ही है, इसलिए उसमें तो कहा ही नहीं जाता कितना असत्य का आश्रय लिया जाता है, और लोभी की तो दुर्दशा ही खराब है। लोभी तो पग पग पर, कदम कदम पर, एक एक क्षण में असत्य का सहारा लेकर के जीता है, क्योंकि लोभ इतना बड़ा भूत, इतना बड़ा पाप है, जो यह जिसके भीतर समा जाता है उसके भीतर से सत्य चला जाता है। इसलिए लगता है कि आचार्य उमास्वामी महाराज ने अपने सूत्रों की व्याख्या में जहां दस धर्म की व्याख्या की वहां पर इसको पांचवें क्रम पर इसलिए रखा कि जब क्रोध, मान, माया, लोभ कहे बेकारी भाव हमारे अंदर से चला जाएगा, इसका विसर्जन हो जाएगा, जब हमारी आत्मा क्षमता, मृदुता, ऋजुता और सुचिता से भर जाएगी, इतनी निर्मल हो जाएगी और पवित्र हो जाएगी, तब कहीं जाकर के हमारी आत्मा में उस सत्य के सूर्य का प्रादुर्भाव हो सकता है। उसके बिना संभव नहीं है। सत्य का सूर्य इन कसाय मायाओं की वजह से ही रुका हुआ है, लेकिन हम भ्रम में जी रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम सच्चे सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, हम सत्य तक पहुंच जाएंगे। किस तरह चल करके पहुंचेंगे आप? क्रोध करके सत्य तक पहुंचेंगे? अहंकार करके सत्य तक पहुंचेंगे? आप वक्रता रख करके सत्य तक पहुंचना चाहते हो और लोग लालच और तृष्णा की वजह से आप सत्य तक पहुंचना चाहते हो? ये हमारी धारणाएं भ्रमपूर्ण है, संदेहमय है। इस तरह सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। यदि इस भ्रम में पड़े रहे कि ऐसा करते हुए भी हम सत्य को उपलब्ध हो जाएंगे और हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि एक दिन वह सत्य हमारे यहां से चला जाए और हम खाली रह जाए। हमारे हाथों में आए क्रोधमान माया लोग, इससे पहले समझ जाओ, अपने भ्रम को छोड़ दो। किसी कवि ने ऐसे ही भ्रम के बाबत चार पंक्तियां लिखी। पथ पर फूल समझ सूलों को बो मत देना, पथ पर फूल समझ सूलों को बो मत देना, मानवता के आदर्शों को खो मत देना। ओ सपनों की सेजों पर अलसाने वालों, कहीं भ्रम में सत्य सवेरा खो मत देना, कहीं भ्रम में सत्य सवेरा खो मत देना। हम शायद ऐसा करते चले जा रहे हैं, हम सूल को भी फूल समझ करके रास्ते पर डालते चले जा रहे हैं, स्वयं को भी चुभ रहे हैं और आने वाले लोगों को भी चुभेंगे। इस चुभन यह पीड़ा कि आपके लिए नहीं हो रही है, ये सूर जो बिखेरे जा रहे हैं, सूर्यों की पीड़ा के आपके लिए नहीं होती है, और आपके आने के बाद जो यहां से गुजरेंगे इस रास्ते से, क्या उन्हें नहीं होगी? वो इस सूर्य की पीड़ा से व्यथित हो जाएंगे और शायद फिर आपका नाम भी स्मरण करेंगे। कौन ने ऐसा व्यक्ति यहां से गुजरा है जिसने इस तरह का दुष्कृत्य किया है? सदियों सदियों पर वो याद रखेंगे आपका नाम, कि सच्चे मार्ग पर, मार्ग के ऊपर भी मिथ्या सूलों को यहां बिछाया गया है, मिथ्या धारणाओं के कांटे यहां पर बिखेरे गए हैं, एकमात्र अपने मिथ्या दंभ की वजह से, एकमात्र अपनी प्रतिष्ठा की वजह से। गलत है ये भ्रम और संदेह। ऐसा करने से तो हम अपने मानवता के आदर्शों को ही खो देंगे, समाप्त कर देंगे। जब मानवता के आदर्श ही नहीं रहेंगे तो धर्म कहां से होगा? धर्म उस वेदिका पर ही विराजमान होता है जहां मानवता होती है, धर्म उस भूमि पर ही पैदा होता है जहां मानवता होती है, इंसानियत होती है। इंसानियत और मानवता जहां से चली जाती है वहां धर्म अंकुरित नहीं होता है, सत्य का प्रादुर्भाव नहीं होता है। इस भ्रम को छोड़िए, नहीं तो आपके हाथ से आने आज आया होगा ये सत्य का सवेरा, सत्य का प्रकाश चला जाएगा और हम खाली रह जाएंगे। जिस सत्य की आज हम चर्चा कर रहे हैं वह सत्य क्या है? क्या केला बोला जाने वाला सत्य है? लोक में तो कहा जाता है कि जो देखा सुना गया है उसको ठीक भैंसा का भैंसा ही कह देने का नाम सत्य धर्म है। सत्य हो सकता है लेकिन सत्य धर्म नहीं हो सकता है, उत्तम सत्य नहीं हो सकता है। उत्तम सत्य क्या हो सकता है? अपने और दूसरे के हित के अभिप्राय को रख करके की जाने वाली हमारी मन वचन काय की क्रिया, इसका नाम ही सत्य है। और यह क्रिया ही तुम्हें उत्साह